ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि की पहली किश्त मार्च माह के अंत तक जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मामला गूंजा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद आज सुरक्षागत कारणों से सुनवाई स्थगित की गई। बम निरोधक दस्ते ने हाईकोर्ट परिसर की ली तलाशी। और कांकेर जिले में उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर मल्लेश और सदस्य रानू पोडियाम ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि की पहली किश्त मार्च माह के अंत तक जारी की जाएगी। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और संबंधित विभागों ने सदस्यों और प्रतिष्ठानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नए जुड़ने वाले और प्रथम बार सदस्य बनने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या का चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से सत्यापन कराना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना इस डिजिटल सत्यापन के योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी सदस्य को इस तकनीकी प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो उन्हें तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई है। योजना की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन आज प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मामला गूंजा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला उठाया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और प्रशासन इसे रोकने में विफल रहा है। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदस्यों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में एक आरक्षक पर भी कार्रवाई हुई है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सक्ती जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का मामला उठाया और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने कहा कि यदि विभाग द्वारा एनजीटी को गलत जानकारी दी गई तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बालोद की कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 111 गांव में पाइपलाइन के जरिए पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने बताया कि 111 गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा कर लिया गया है और सभी जगह नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। वहीं सदन में आज विधायक अजय चंद्राकर ने स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट रैपिडो जैसी ऑनलाइन सर्विस में काम कर रहे गिग वर्करों और उनकी सुरक्षा का मामला उठाया। श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की कितनी कंपनियां काम कर रही हैं और इनमें कितने गिग वर्कर कार्यरत हैं। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि प्रदेश में श्रम विभाग के अंतर्गत स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट रैपिडो जैसी कंपनियां पंजीकृत नहीं है। उन्होंने गिग वर्करों की संख्या के बारे में विभाग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही। श्रम मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग वर्करों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावना है। सरकार बस्तर में कृषि पर्यटन और लघु वनोपज को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इससे पहले राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर आपत्ति करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी सदन में मौजूद नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और अन्य मंत्री सदन में पहुंचे। बाद में कांग्रेस विधायकों ने भी चर्चा में भाग लिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षागत कारणों से हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा सहित सभी न्यायाधीश अपने कोर्ट रूम में बैठकर प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला। रजिस्ट्रार जनरल ने जिला और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ता हाईकोर्ट परिसर सहित प्रमुख जगहों की तलाशी में जुटा हुआ है। हाईकोर्ट परिसर में आने जाने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जा रही है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले में आज उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर मल्लेश और सदस्य रानू पुडियाम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि माओवादी कमांडर मल्लेश ने AK-47 राइफल के साथ छोटे बेठिया कैंप में आत्मसमर्पण किया। वह काफी समय से नारायणपुर जिले में सक्रिय था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित BTI मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ साथ व्यापार और उद्योग के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने नेशनल ट्रेड एक्सपो के आयोजन के लिए कैट की टीम को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रेड एक्सपो में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कैट द्वारा प्रकाशित स्वदेशी पोस्टर का विमोचन भी किया गया। संयुक्त राष्ट्र संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग के संस्थापक किरसी हेवरिनेन इन दिनों छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने बस्तर जिले के ग्राम धुड़मा रास का दौरा किया। उनके स्वागत में धुरुआ डेरा होम स्टे में धुरुआ नृत्य और गीतों के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। सुश्री किरसी ने कहा कि इस प्रकार का अनुभव उनके लिए अत्यंत विशेष और अविस्मरणीय है। सुश्री किरसी ने विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात में पर्यटन संभावनाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मेंद्री घूमर क्षेत्र में स्थानीय हितग्राहियों के साथ पर्यटन गतिविधियों पर भी चर्चा की। यह प्रवास विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन से जुड़े बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के मानकों के अनुरूप धुड़मा रास और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर केंद्रित है। महासमुंद पुलिस ने महासमुंद और सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में 137 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत 68 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर रेहटीखोर के पास वाहन की तलाशी के दौरान 2 वाहनों से यह गांजा बरामद किया गया। आरोपी ओडिशा से यह गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। और पेश है मौसम का हाल। अगले एक सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में गिरावट के बाद वृद्धि हो सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 1 मार्च से 1-2 स्थानों पर वर्षा होने के भी आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका के प्राचार्य RN भया को एक व्यक्ति से 15,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भिलाई की छावनी थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 आरोपियों को मध्यप्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हथबंद क्षेत्र के उडेला पोसरी के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर कोनकोना पंडो रिसोर्ट के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में राजस्व और पुलिस की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा खुरहा FMD की रोकथाम के लिए 2 मार्च से 15 मार्च तक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 मार्च से 30 मार्च तक गांव में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि की पहली किश्त मार्च माह के अंत तक जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मामला गूंजा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद आज सुरक्षागत कारणों से सुनवाई स्थगित की गई। बम निरोधक दस्ते ने हाईकोर्ट परिसर की ली तलाशी। और कांकेर जिले में उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर मल्लेश और सदस्य रानू पोडियाम ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।